syndrome.
मंगलाचरण करेंगे. प्रणमो अरिहंतार्णम् नमो सिद्धार्णम् नमो आयिर्यार्णम् नमो वज्झायार्णम् नमो लोये सौवसाहूणम् एषो पञ्च नमो यारो सौव पावपणासनो मङ्गलार्णम् च सव्येषीम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् पंच परमेश्वरी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की संसारी प्राणी जब संसार का जीवन जीता है तो वह अवश्य शरीरधारी होकर के रहता है. यह एक सिद्धांत है, उसके पीछे रहने वाला एक अकाट्य नियम है. यदि हम संसारी हैं तो निश्चित रूप से शरीर से सहित रहना पड़ेगा. यदि शरीर नहीं भी मिला है तो बहुत जल्दी मिलने की संभावना जहां बनी रहती है उन जीवों को संसारी जीव कहते हैं. एक गति को त्याग कर छोड़कर जब दूसरी गति की ओर हम गमन करते हैं उस वक्त अपने साथ कोई शरीर नहीं होता जिसको हम चिरकाल से परिचित हैं औदारिक शरीर कहते हैं. देव गति में देवों के पास वैकृत शरीर होता है, नारकी जीवों के पास भी वैकृत शरीर माना गया है. मनुष्य का औदारिक शरीर होता है और त्रिरंश गति में त्रिरंशों का भी औदारिक शरीर जिसको धारण करते हैं त्यागते हैं, धारण करते हैं त्यागते हैं, जो आंखों से दिखाई दे सकता है दिखाई देता है, उस शरीर का नाम स्थूल शरीर है. और जो हमारे आंखों के लिए दिखता नहीं लेकिन साथ सतत रहता है, यहाँ से जाते समय भी रहता है, जाने के बाद भी रहता है, सतत बना ही रहता है, उस शरीर का अभाव कभी जीवात्मा को छोड़ करके हुआ ही नहीं, साथ ही रहता चला आता है, उसका नाम है कर्म शरीर. एक कर्म शरीर जब तक आत्मा के साथ में रहता है तब तक आत्मा को संसारी कहा है। इस कर्म शरीर के मिलने के कारण से ही शेष शरीरों की प्राप्ति होती है। नरक में जाता है तो वैकृत शरीर मिलता है, देवगति में चला जाता है तो वहां पर भी वैकृत शरीर की प्राप्ति होती है। त्रियंश गति में आता है तो औदारिक शरीर की प्राप्ति होती है, और मनुष्य बनता है तो भी औदारिक शरीर की प्राप्ति होती है। हम लोग जो वर्तमान में अपने शरीर को धारण कर चुके हैं इसका नाम है औदारिक शरीर, और तिर्यंच गति में तिर्यंच प्राणी जो दिखाई देते हैं, जल दिखाई देता है, वनस्पति, पृथ्वी, अग्नि, वायु, ये सभी जो अनुभव में आते हैं, देखने में आते हैं, ये भी औदारिक शरीर वाले हैं। स्थावर कायिक जीवों के लिए भी औदारिक शरीर है, और त्रस्कायिक जीव जो कि द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये जीव भी औदारिक शरीर वाले ही हैं। टोटली बात ये है कि जो हमारे आंखों के लिए दिखाई देता है ऐसा शरीर स्थूल माना जाता है, और जो दिखाई नहीं देता उस शरीर को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। देवों का शरीर स्थूल है, मनुष्यों का शरीर स्थूल है, जल का एक इंद्रिय जीव का शरीर स्थूल है। दिखता है कि नहीं? दिखता है। उसमें नहीं दिखाई देने वाला जीव भी है, और दिखाई देने वाला जीव भी है जिसको स्थूल कह सकते हैं या बादर कह सकते हैं, और जो दिखाई नहीं देता उसके लिए हम सूक्ष्म जल का एक जीव कहते हैं। उसमें दो प्रकार हो गए, सूक्ष्म जल का एक जीव और बादर जल का एक जीव। ऐसे ही पांचों में समझ लेना, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, बादर पृथ्वी का एक, सूक्ष्म वायु का एक, बादर वायु का एक, सूक्ष्म अग्नि का एक, बादर वायु का एक, किंतु द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये जीव नियम से स्थूल शरीर वाले ही होते हैं, बादर शरीर वाले नहीं होते। इस प्रकार से केवल ज्ञान के धारी केवली भगवान ने जीव तत्व का उपदेश देते समय इसका कथन किया है, और वही कथन दशलक्षण के बाद प्रथम प्रवचन में आपके सामने मैं कर रहा हूं। भगवान ने जो कुछ कहा है वही करना पड़ता है। अपने ज्ञान में जीव कितने प्रकार से हैं ये छद्मस्त पता नहीं लगा सकता। जैसे केवली भगवान पता लगा करके उपदेश देते हैं, छद्मस्त जीव पता नहीं लगा सकता। उनके कहे हुए वचनों के आधार से प्रैक्टिकली वह पता लगा सकता है, किंतु वैसे पता लगाना किसी को भी यह संभव नहीं है। तो केवली भगवान ने कहा है इस संसार में दो प्रकार के जीव हैं, सूक्ष्म जीव और स्थूल यानी बादर जीव। हमारे पकड़ में कौन से जीव आ सकते हैं? जिसको हम मार सकते हैं, मारने से दुख हो सकता है, हिंसा हो सकती है, कुछ कहने से उसको पीड़ा हो सकती है, ये जीव कौन है? ये बादर है। जो पकड़ में आ सकते हैं वो बादर, और जिनको पकड़ा नहीं जा सकता, जिनकी हिंसा नहीं हो सकती, जिनको हम दुख भी नहीं पहुंचा सकते और सुख पहुंचाने का भी कोई उनके लिए साधन नहीं है, उन जीवों का नाम है सूक्ष्म। वो सूक्ष्म जीव इतने सूक्ष्म हैं कि वो किसी यंत्र के माध्यम से भी पकड़ में नहीं आने वाले हैं, आप जिसको मैक्रोस्कोप कहते यंत्र जो सूक्ष्म जल कायिक जीवों को या वनस्पति में रहने वाले जीवों को पता लगाते हैं वो स्थूल ही हैं। जो हमारे मैक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देते हैं वो स्थूल हैं, सूक्ष्म नहीं। सूक्ष्म जीवों को उसमें देखा ही नहीं जा सकता और सूक्ष्म जीव ऐसे रहते हैं जिनका गमन सतत चलता ही रहता है, रुकते नहीं, वो किसी से रुक नहीं सकते रोकने पर, और वो अपने शरीर के माध्यम से किसी को रोक नहीं सकते। हम उनको रोक नहीं सकते और वो हमको रोक नहीं सकते। आप यहाँ पर कोई सूक्ष्म जीव हैं, बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं, आप उनको पकड़ लेंगे तो पकड़ में नहीं आएंगे, वो यहाँ से यहाँ पार हो जाएंगे। इतने सूक्ष्म परिणति है जीवों की और उनको भी शरीर है। कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर। उन त्रिदेशियों को भी, सूक्ष्म कायिक जीवों को भी औदारिक शरीर है और हम लोगों का भी औदारिक शरीर है। तो औदारिक शरीर की दशा दो तरह की हो गई, एक दिखाई देने वाली और एक न दिखाई देने वाली, एक पकड़ में आने वाली और एक न पकड़ में आने वाली, दो प्रकार के शरीर की परिणति हो गई। इसको औदारिक शरीर कहते हैं। जो जो स्थूल शरीरधारी हैं वे एकेंद्री भी हैं और त्रिकायिक भी हैं। द्विइंद्री, तीनेन्द्री, चतुरेन्द्री और पंचेन्द्री ये नियम से बादर ही होते हैं, स्थूल ही होते हैं। हम लोगों के लिए इन्हीं की रक्षा करने के लिए बताया जो स्थूल हैं। सूक्ष्म की रक्षा क्या करेंगे आप? रक्षा का तात्पर्य ये है कि उनको मारो मत, जीने दो। जीवो जीवस्य जीवनम, अथवा यूं कह दो जीवो जीवस्य भोजनम। जीव जीव का भोजन है, नहीं है? आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? पानी नहीं पीते, पानी का एक जल कायिक, जल कायिक जीवों को ही पीते हैं आप। और पी करके क्या कहते हैं? हमने किसी को नहीं मारा। यदि कुछ पिया है तो आप शूंसक हो करके ही लौटे हैं, कुछ मार करके ही आए। इसलिए कहा खाना पीना भी धर्म नहीं है। और दस लक्षण के बाद किसी किसी को लग रहा होगा कि एक ही बार भोजन करना बहुत अच्छा लगता है, और बिल्कुल ठीक है, खाने को धर्म कहां कहा है। धर्म है क्या? खाना धर्म नहीं है, खाने को बंद करना ही धर्म है। हाँ, खाना पड़ता है ये बात अलग है, जब तक शरीर है तब तक खा रहे हैं ये बात अलग है, लेकिन खाते समय भी आप धर्म कर सकते हैं ये भी कहा है, खाते हुए भी। ये कैसे महाराज? तो जितना खा रहे हैं वो तो अधर्म ही है, और खाने पीने में जो विवेक रख करके खा रहे हैं वो है धर्म। खाते हुए भी आप धर्म कर सकते हैं। कैसे धर्म कर सकते हैं? खाते समय ये वस्तु शुद्ध है या अशुद्ध, ये भक्ष है या अभक्ष, ये विवेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। खाते खाना भी धर्म है और खाना अधर्म भी है। अभक्ष्य खाना अधर्म है और भक्ष्य खाना धर्म है कि नहीं? तो खाना भी धर्म है और खाना अधर्म भी है। क्या खाना और क्या नहीं खाना, यह विवेक ज्ञान हम लोगों को आवश्यक है क्या नहीं? आवश्यक है। और यदि ये आवश्यक है तो खाने पीने में क्या क्या आ रहा है इसका ज्ञान होना आवश्यक है क्या नहीं? ये भी आवश्यक है। क्या खा रहे हैं प्रश्न उठता है। मैं तो पानी पी रहा हूँ, किसी को नहीं मार रहा हूँ, अज्ञानी व्यक्ति ये कहता है। और ज्ञान होने के बाद वही व्यक्ति ये कहता है मैं अभक्ष्य नहीं खाता हूँ, मैं पानी छान कर पीता हूँ। बिल्कुल ठीक है, आप अभक्ष्य नहीं खाते, अनछना पानी अभक्ष्य ही होता है, अभक्ष्य पीते भी नहीं आप, इतना तो ज्ञान हो गया है। लेकिन अगर ये आपको ज्ञान नहीं है कि जल भी एकेंद्री जीव है और वह जीव होने के कारण से हमारे पीने में आ रहा है तो वहां पर भी हिंसा हो रही, ये कल्पना आपको पानी पीते समय कभी आती है क्या? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और नहीं आए तो एक नहीं आए तो बिल्कुल रपाट और सपाट वहां पर कुछ विवेक नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, कुछ दया नहीं, कुछ करुणा नहीं, करुणा करने का सवाल ही नहीं उठता। हमारे लिए यही पता नहीं कि जल भी जीव है तो फिर दया करने का कहां विचार आएगा। अब जीवन में सावधानी आ रही है, जब ज्ञान नहीं था तब हम जब पानी पीते थे उस समय पीने से पहले एक आदत थी, पीने से पहले चाबी खोल दिया, पकड़ लिया ग्लास में, चार बार धोया और चार ग्लास पानी तो फेंक दिया और पिया। कितना कम प्यास थी, एक ग्लास पकड़ा और आधा पी करके फिर उस आधे को फेंक दिया। अब बताइए ये व्यक्ति विवेकी है कि अविवेकी? तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे पीते हुए भी धर्म करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये हमारे लिए पता होना आवश्यक है क्या नहीं? हाँ हाँ, जितनी प्यास है ठीक है, ग्लास गंदा है, धोना है, आवश्यक धोने के लिए जितना पानी चाहिए उतना ही पानी लो, अच्छे से देखो साफ हुआ है क्या नहीं, थोड़ा हाथ भी डालो, नहीं जाता है तो हाथ तो डाल नहीं रहे हैं, चल रहा है। ये प्रमाद है, इसको प्रमादचर्या कहा और इसका त्याग श्रावकों को भी करना चाहिए और मुनि के पास तो ग्लास होता ही नहीं, हमको क्या त्यागना, हम ऐसा करना ही नहीं पड़े इसलिए ग्लास भी छोड़ दिया अपन ने। ग्लास ही नहीं है तो प्रमाद कहां से आएगा। तो आवश्यक पानी को जितना हम चाहते हैं धोने के लिए पीने के लिए उतना ही पानी पीना ये धर्म है, उतना ही पानी पीना धर्म है, उससे ज्यादा खर्च करना ये अधर्म है, ये पाप है। धर्म 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 कहते कहते जिंदगी गई, धर्म किया ही नहीं, और किया भी तो कैसे किया, धर्म 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 कहते कहते धर्म का मर्म मालूम नहीं, धर्म 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 कहते कहते किस प्रकार का धर्म किया। चर्या में तो वही हिंसा है लेकिन जरूर दशलक्षण में एक दिन छोड़कर एक उपास किया। और चार माह के लिए कांदा त्यागा रूढ़ी परंपरा निभा रहे हैं, रूढ़ी निभा रहे हैं। यानी सभी लोग चार महीने करते हैं, इसलिए हम भी चार महीने कर रहे हैं। किसी को ये साहस नहीं हो रहा है कि चातुर्मास के अलावा हम पूरी तरह से कांदा लहसुन त्याग दें, ये विचार ही नहीं आ रहा है। नहीं, वो तो कांदा लहसुन तो चातुर्मास में ही नहीं खाते जैन लोग, ये नियम बना रहे हैं क्या? जो जैन है वो कांदा लहसुन चार महीने नहीं खाते, ऐसा नियम है क्या? जो हमेशा खाता है, जिसको छोड़ना असंभव है, जिनको निभ नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ मार्ग निकाल करके चार माह तो कम से कम छोड़ूं, ये कह करके चार माह का संकल्प लेता है। और हमारे पास कई फार्म आए हैं, उसमें चार माह चार माह चार महीने कहा कि रूढ़ी परंपरा निभाई जा रही है सब जगह। आजीवन भी किया जा सकता है, ये कोई विचार ही नहीं कर रहे। कई फार्म है, चार महीने का भरा है, विचार करके भरा होगा बिल्कुल, लेकिन रूढ़ी नहीं निभाना चाहिए। चार महीने यानी चार महीने, ये जैनों के लिए चार महीने, उसी में अटक जाओगे तो चार महीने के जैन और आठ महीने के अजैन ऐसा बनोगे क्या? ऐसा तो नहीं है। धर्म दुनिया में एक ही है, जिसको कहते हैं अहिंसा। अहिंसा के लिए कोई जाति नहीं होती। बोलो, अहिंसा धर्म की कोई जाति है क्या? नहीं है। ये सत्य है क्या? नहीं, ये सत्य है। अहिंसा के लिए कोई जाति नहीं होती, अहिंसा के लिए कोई कुल भी नहीं होता। इस कुल में, इस जाति में जन्म लिया हुआ जीव ही इस अहिंसा का पालन कर सकता है, अन्य नहीं कर सकता। ऐसा कोई ठप्पा है क्या जाति पर और कुल पर? नहीं है। ये सत्य है क्या? नहीं। तो धर्म 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 कहते कहते उसका मर्म तो समझे नहीं, और अनादिकाल से हमने कुछ नहीं किया है। जो कुछ किया है वह अधर्म के कोटि में रहा है। अब जो समझ करके करने वाले हैं वो धर्म के कोटि में आने वाला है। और फिर इसमें भी आप लगा दो एक सूत्र, आपका तो पेटेंट सूत्र है क्या? पहला पासून हाँ, रूढ़ी परंपरा अहिंसा पहले पासून जरूर है, लेकिन जो हिंसा है, जिसको अधर्म कहा है, जिसको पाप कहा है, उसको पहला पासून कह करके सुरक्षित रखना चाहिए या उसको त्यागना चाहिए? धर्म के लिए ही लोग कुल का सवाल खड़ा कर देते हैं, संप्रदाय का सवाल खड़ा कर देते हैं, जाति का सवाल खड़ा कर देते हैं, वो अज्ञानी है। धर्म की कोई जाति नहीं, धर्म का कोई संप्रदाय नहीं होता, धर्म का कोई भी ठप्पा नहीं होता प्राणी वर्ग का। यह धर्म तीन लोक में जितने संसारी प्राणी हैं वो सब पालन कर सकते हैं, लेकिन इस धर्म का पालन करने के लिए पंचेंद्रिय जीव को ही संभव है। एकेंद्रिय जीव से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव धर्म नहीं कर सकते, क्योंकि यह विवेक उन जीवों में उत्पन्न नहीं हो सकता। हे क्या है, उपाधि क्या है, भक्ष्य क्या है, अभक्ष्य क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, ये पता चलता है। जब कोई उनको मारेगा, मैं दुखी हूं कहता है, जब कोई रक्षण करेगा, मैं बहुत सुखी हूं, ये जानता है। लेकिन ये नहीं जानता वो, मैं जिस आहार को ग्रहण कर रहा हूं वो भक्ष्य है या अभक्ष्य है, मैं जिसको खा रहा हूं वो जीव सहित है या जीव रहित, इसमें हिंसा है या अहिंसा, ये नहीं जानता। इसलिए धर्म करने का अधिकारी तो पंचेंद्रिय जीव अवश्य है। एकेंद्रिय आदि धर्म नहीं कर सकते। अहिंसा का पालन एकेंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव नहीं कर सकते, वो बाध्य होकर के नहीं कर पाते। उनके लिए मजबूरी है। क्या मजबूरी? पांच इंद्रिय नहीं मिले इसलिए, मन नहीं मिला। जिसको पांच इंद्रिय और एक मन मिलता है वही धर्म कर सकता है। धर्म का सर्वाधिकारी वही है। और ऐसे पंचेंद्रिय जीव इस दुनिया में, इस जगत में, तीन लोक में कितने हैं? अनंत तो नहीं है और संख्यात भी नहीं है, असंख्यात में बैठ जाते हैं। देव गति में असंख्यात देव हैं, नरक गति में असंख्यात नारकी हैं, तिरंच गति में असंख्यात पंचेंद्रिय तिरंच हैं, मनुष्य गति में संख्यात पंचेंद्रिय मनुष्य हैं। ये धर्म कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कौन सा धर्म? अहिंसा धर्म। अपने अपने स्टेज पर, अपने अपने दशा में जिसको जितना करना संभव है उतना वह कर सकता है, अवश्य कर सकता है। एक देव भी कर सकता है, एक मनुष्य भी कर सकता है, एक त्रिरंच प्राणी भी कर सकता है। त्रिरंच प्राणी कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। इसीलिए तो आप लोग अपने घर में घर की रखवाली के लिए किस त्रिरंच को पालते? कुत्ता। घर की रखवाली के लिए कुत्ता पालते हैं और वह आपकी रक्षा कर रहा है। आपको हिंसा होने से, दुख होने से, संकट आने से वह बचा रहा है, सूचना दे रहा है। ये क्या उसका धर्म नहीं? ये आपके ऊपर उसकी दया है, आपके ऊपर की जाने वाली करुणा है। ये बात अलग है कि आप खिलाते हैं इसलिए वो करता है, लेकिन वह कार्य यदि वह सोच समझ करके अपने मनःपूर्वक यदि करने लग जाए तो वही कार्य उसका धर्म की कोटि में आ सकता है क्या? नहीं। समझदार होकर के करने लगा। यहाँ तक कहा है एक कुत्ते को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि वह संगी पंचेंद्रिय है, मन सहित है। मन सहित जीव धर्म कर सकता है, मन रहित जीव धर्म नहीं कर सकता। तीर्थंकरों ने जिस अहिंसा धर्म का उपदेश दिया है वह धर्म सर्वत्र सामूहिक धर्म है। सामूहिक सार्वजनिक धर्म यदि कोई है तो वह एक ही है, अहिंसा। और बता दो, देखेंगे धर्म और कोई चीज है क्या? अहिंसा को छोड़ करके और किस किस को हम धर्म कहे? किसी को धर्म कह सकते? नहीं महाराज, उत्तम क्षमा भी धर्म है, मार्दव भी धर्म है, आर्जव भी धर्म, ये दस धर्म भी है आप कह सकते। आप ये कह सकते हैं, लेकिन क्षमा क्या है? अहिंसा का एक रूप है वो। क्षमा यदि अहिंसा का रूप है तो उसकी विरुद्ध वस्तु क्या थी? विरुद्ध जो है क्रोध था। क्रोध क्या है? हिंसा। हिंसा क्या है? अधर्म है। क्षमा क्या है? धर्म है। धर्म क्या है? अहिंसा है। यानी क्षमा अहिंसा रूप ही तो है। और क्रोध चार प्रकार का होता है, ये आपको मालूम है। अनंतानुबंधी जनित क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध, संज्वलन क्रोध, ये चार प्रकार का क्रोध तो है ही। इस चार प्रकार के क्रोध में क्रोध हैं, तो ये चारों प्रकार के क्रोध अलग अलग प्रकार की क्वालिटी की हिंसा है वो। चार तरह की हिंसा हो सकती है। कोई मनुष्य चारों प्रकार की हिंसा कर सकता है, कोई मनुष्य तीन प्रकार की हिंसा कर सकता है, कोई मनुष्य दो प्रकार की हिंसा कर सकता है, कोई मनुष्य एक ही प्रकार की हिंसा कर सकता है, और कोई मनुष्य चारों प्रकार की हिंसा को रोक सकता है। यदि रोक लेता है तो भगवान कहलाता है, नहीं रोकता है तो साधु संत कहलाता है। कुछ रोका है और जो शेष है उसको भी रोकने का प्रयत्न कर रहा है तो वो साधु है। और साधु की तरह इन चारों प्रकार के क्रोधों को रोकने के लिए जो पुरुषार्थ और प्रयत्न कर रहा है उसको हम श्रावक कहते हैं। श्रावक धर्म में श्रावक को ये बताया है, चार में से एक को पहले रोको, अनंतानुबंधी क्रोध को हटाओ पहले। ये अनादिकाल से चला आ रहा है। सबसे बड़ी हिंसा है, स्थूल हिंसा है, और यह हिंसा की मात्रा कम होती चली जाती है। अनंतानुबंधी क्रोध में अधिक हिंसा है, अप्रत्याख्यान में इससे कम है, प्रत्याख्यान में इससे भी कम हो गया, संज्वलन में ना के बराबर है, और उसको भी रोक लेते हैं तो क्रोध विजयी हो गए, और फिर आत्मा क्या बन गई? परमात्मा बन गई। अहिंसा क्या क्या पाने का रास्ता है? क्या पाना है आपको? मोक्ष पाना है। मोक्ष में आपकी दशा किस रूप में होती है? आप क्या होते हैं मोक्ष में? सिद्ध अवस्था। सिद्ध अवस्था को भगवान कहते हैं संसारी? भगवान कहते हैं कि संसारी? थोड़ी आवाज संभालो, आवाज निकल नहीं रही। भगवान कहते हैं कि संसारी? भगवान ही कहते हैं, भगवान कहते हैं। अरहंत को संसारी तो कहते हैं, लेकिन क्रोध चारों क्रोध हिंसा के वे विजयी हैं तो क्या कहेंगे? भगवान तो कहेंगे ना, अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान। नमोकार मंत्र में दो भगवान हैं और तीन गुरु हैं, आचार्य परमिष्ठी, उपाध्याय परमिष्ठी और साधु परमिष्ठी। तीन गुरु स्थान हैं और दो भगवान के स्थान हैं। पांच ही शरण हैं संसारी जीवों के लिए। अब ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं, पांच के लिए तो बात ही खत्म है। हाँ, पांच कह दिया तो पांच ही आप पांच की पंचायत में पड़ जाओ, छठे की पंचायत में नहीं पड़ना। वंदनी भी पांच, अर्चनी भी पांच, शरण जाने योग्य भी पांच। हमें किसकी शरण में जाना चाहिए, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, हमें किसका किसको नमन करना चाहिए, तो ये पांच से ही समझ लो कि ये क्या है, इनमें क्या विशेषता है, और पांच के बाहर जो रहते हैं उनकी क्या विशेषता है। दो ही बातें समझना है। ज्यादा दूर घुमा फिरा करके समझने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट समझो। ये पांच पूजने किस वजह से हैं? अहिंसा की वजह से कहो ना, परिग्रह हिंसा है, अपरिग्रह अहिंसा है, अहिंसा के वजह से पूजनी है। पूज्यता आने के लिए कितने प्रकार के क्रोध को जीतना पड़ेगा, कम से कम कितने? नहीं नहीं, ये रहे चलेगा, संजोलन रहे चलेगा। अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, तीन क्रोध को तो जीतना ही पड़ेगा। ये तीन प्रकार के क्रोध जब तक जीवन में रहते हैं तब तक जीव परिग्रह से मुक्त रहता भी नहीं, रहता ही नहीं। बाह्य परिग्रह नियम से रहते हैं। अर्थ ये हुआ, जिस जिसके पास वस्त्र आभूषण अलंकार इत्यादि परिग्रह हैं, ये बाह्य वस्तु हैं, उस जीव के पास अहिंसा धर्म नहीं है। यदि है तो उसमें साधना है, परिग्रह को त्यागने का अभ्यास है, प्रैक्टिकल है। कहां पर आने के लिए? संपूर्ण अपरिग्रह दशा को प्राप्त होने के लिए प्रैक्टिस चल रहा है, और प्रैक्टिस करने वाले पांच में नहीं आते। क्या आते? नहीं आते। तो कौन कौन से गुणस्थान वर्ती मालूम है ना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांच गुणस्थान तक बाह्य परिग्रह होता है, और पांच गुणस्थान तक ही ये तीन प्रकार के क्रोध होते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान। ये तीनों पांचवें गुणस्थान तक होते हैं। संज्वलन भी है, पहले दूसरे तीसरे उसमें भी है, लेकिन संज्वलन ऊपर दसवें तक जाता है। हाँ, दसवें तक जाता है वो, लेकिन दसवें से पहले पहले छठे से लेकर ही पूजनीयता आती है, यह नमोकार मंत्र हमारा बताता है। पूजनीयता कब से आती है? तो छठे से ही आती है, और छठे गुणस्थान वर्ती जीव के पास चार में से कौन सा है? एक संज्वलन क्रोध है। अभी इतना सूक्ष्म है, वो ना के बराबर है, ना के बराबर उदय में है, क्रोध करता नहीं, बुद्धि पूर्वक क्रोध करेगा नहीं, बहुत मंद है। थोड़ा सा और कदम उठा ले तो अरहंत बन जाएगा। वही साधु, वे ही गुरु जो आचार्य, उपाध्याय और साधु के रूप में हैं, थोड़ी सी और शक्ति लगा लें तो इस संज्वलन क्रोध को जीत करके क्या बन जाएंगे? अरिहंत बन जाएंगे। जो संज्वलन को जीतने में लगे हुए हैं वो हैं पूजनी, या तो संज्वलन को जो जीत चुके हैं ऐसे अरहंत भगवान भी पूजनी, या समस्त कर्मों को, आठों कर्मों को जीत चुके हैं वे सिद्ध भगवान भी पूजनीय अर्चनीय। जैन धर्म में ये पांच ही वंदनीय, पूजनीय, अर्चनीय बताए गए हैं, इसका चिंतन मनन करना चाहिए जैनों को। जैन कौन महाराज? हम लोग? हाँ, फिर कहना पड़ेगा क्या? जैन का मतलब अहिंसक व्यक्ति। जैन इस शब्द पर किसी का ठप्पा नहीं चलता। आप लोगों पर ठप्पा चल सकेगा क्या? जैन यानी आप लोग? नहीं, जैन का मतलब जो हिंसा पर विजयी है, हिंसा का विजेता मनुष्य, चाहे देव हो, मनुष्य हो, चाहे त्रेंश हो, वो जैनत्व को प्राप्त कर सकता है। त्रेंश तीन तीन तो नहीं जीत सकता, दो जीत सकता है, दो जीत सकता है। मनुष्य चारों चारों जीत सकता है। देव देवगति के देव, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी, कल्पवासी, चतुर्निकायिक देव हैं। ये देव कितने बोलो, लगाओ दिमाग। यही तो दिमाग नहीं लग पाता, इसलिए हम भटके हैं, अटके हैं। देखो कितने देव जीत सकता है, चार में से। एक जीत सकता है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। त्रिरंश कितने जीत सकता है? दो, क्योंकि पांचवा गुणस्थान हो सकता है ना, तो दो जीतेगा। मनुष्य चारों जीतेगा, देव एक ही जीतता है। तो अहिंसा की मात्रा आप में अधिक है कि देव में अधिक है? तो पूज्य कौन? बस यही तो समझना है। जो सत्य है, तथ्य है, उसको तो स्वीकार करना ही पड़ता है। प्रकृति के सत्य को हम नकार नहीं सकते। नकारेंगे क्या? अपना चेहरा जैसा है वैसा ही बताना पड़ेगा या दूसरा बताना पड़ेगा? एज इट इज, जैसा है वैसा। केवली भगवंत ने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही बताया है। देवों को बताया, देव लोग एक ही जीत सकते, त्रिरंश दो जीत सकते, मनुष्य चारों जीत सकते। तो पूजनीयता किसमें है? ये सिद्धांत प्रत्येक मनुष्य को पता चलना आवश्यक है, और इस सिद्धांत की चर्चा हर आदमी के सामने आपको करना चाहिए। सिद्धांत की चर्चा करो, तत्व की चर्चा करो। आप क्या चर्चा करते हैं? आपने कितने लड्डू चढ़ाया? आपने कितने नारियल चढ़ाया? आपने कितने फूल चढ़ाया? आपने कितना पैसा डाला? मैंने आज सुना निर्वाण लाड़ू चढ़ाते महावीर जयंती के दिन। इधर के लोग लड्डू में पैसा डालते हैं, और वो पेट भगवान बिना देके खाएंगे, पेट में गया तो क्या पेट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? धोखा दे रहे हो भगवान को, ये खा ही नहीं सके ऐसा कर रहे हो। आप लड्डू चढ़ाते हैं, देखो लड्डू चढ़ाने की अपेक्षा, देखो लड्डू चढ़ाना क्यों है? मोक्ष जो है वह अंतिम सुख है, मोक्ष ही असली सुख है दुनिया में। वो आत्मिक सुख है, आत्मा में ही उत्पन्न होता है। समस्त इन हिंसा के कारणीभूत कर्मों को, शरीर को जब हम हटा देते हैं, दूर कर देते हैं, पूर्ण अहिंसक बन जाते हैं। अहिंसा की परिपूर्णता ही मोक्ष है। अहिंसा भूतानां परम विदितं ब्रह्म परमं नसा तत्रारंभोस्त्यनुरपिचे यत्रा श्रम विधो। अहिंसा ही प्रत्येक आत्मा की परमात्म अवस्था है। आप अहिंसक हैं तो कुछ अंशों में परमात्मा हैं, लेकिन वंदनीय परमात्मा नहीं, क्योंकि उसकी एक सीमा है। उस सीमा तक पहुंचने के बाद ही आप वंदनीय, अर्चनीय, पूजनीय होते हैं। देव लोग एक ही त्यागते हैं, और इसीलिए वो भी स्वर्ग ही उतर करके आता है अरहंत भगवान के समो शरण में। इनकी पूजा वंदना अर्चना करने के लिए वो देव होकर अरहंत मनुष्य हैं, इनके पास क्यों आए? इन्होंने चारों पर विजय प्राप्त किया है, चार प्रकार के हिंसा को जीतकर परम अहिंसक बने हैं। ये अहिंसा गुण की पूजा करने के लिए आए हैं, है ना? गुण वंदनी है कि दोष वंदनी है? ये वंदे तद्गुण लब्धये, हम गुणों के उपासक हैं। हम का मतलब हम धर्मात्मा, जो धर्मात्मा है वह धर्मात्मा गुणों की उपासना करता है, और विवेकहीन अधर्मात्मा जीव दोषों की उपासना करता है। करेगा ही, क्योंकि अभी ज्ञान नहीं हुआ, अभी आंखें नहीं खुली। भीतरी आंखें खुलने के बाद ही हम क्या वंदनी क्या अवंदनी इसको सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। जानबूझ करके भी आप किसी से बाध्य होकर के कुछ कर रहे हैं तो भी तो पाप है ना। आपको कोई कह रहा है कि जहर पी लो, पियोगे? जहर डाल दिया तो बात अलग है, हम फुर्र कर सकते हैं, बचने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। जहर अगर मुंह में भी डाल दिया तो हम गुटकेंगे नहीं, और जबरदस्ती जहर को भीतर कोई डाल नहीं सकेगा। प्रयत्न करते समय भी हम बचने की चेष्टा करते हैं, जहर कोई पिला रहा हो तो हम चेष्टा करते हैं बचने के लिए, और यदि कोई अधर्म को पिलाने के लिए आ गया तो क्या करेंगे आप? फुर्र करेंगे क्या? गट करेंगे? वो फुर तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप जीवित रहोगे, धर्मात्मा कहलाओगे, अहिंसक कहलाओगे, आदर्श कहलाओगे, सज्जन कहलाओगे, सुखी कहलाओगे, पवित्र कहलाओगे, शीलवान कहलाओगे, संयमी कहोगे कहलाओगे। ऐसा संयम का मार्ग पकड़ने का साहस जिस जीव के पास उत्पन्न हो जाता है, साहस आ जाता है, वह किसी का विकल्प दुनिया का रखता ही नहीं है, उसको उसका रास्ता दिखता है, सीधा रास्ता दिखता है। और प्रत्येक मनुष्य को यही चिंतन करना चाहिए कि हमारा कल्याण कैसा हो, हमारे लिए सुख कैसा हो, दूसरे को दुख देने से हमारे लिए सुख मिलता है क्या? बोलो ना। दूसरे को सताने पर हमारे लिए सुख मिलता है, ये सिद्धांत है क्या? तो क्या सिद्धांत है? हम यदि दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो ये हमारा पाप है, अधर्म है, अशांति है, क्या हम धर्मात्मा हैं? ये पाप है, ये पाप अशांति है। तो अशांति से किसका धर्म घात हुआ? दूसरे का या अपना? अपना ही घात हो गया। हमने अगर दूसरे को सताया, हमारा ही घात हुआ, उसका घात नहीं हुआ, उसको पीड़ा हो गई, लेकिन आपने जो पीड़ा पहुंचाई उसको दुख के रूप में उसने लिया नहीं लिया, ये उसके ऊपर है। अगर आपसे दुखी हो गया तो उसको हिंसा हो गई, आपके दुख को वो उपसर्ग के रूप में ले लेता है तो दुखी नहीं होता है, वो धर्म में अडिग रहता है। एक व्यक्ति है, बैठा है एक साधु के पास। इधर के साधु शांत हैं और इधर के व्यक्ति साधु के सानिध्य में आया है और पास में बैठा हुआ है। उधर से एक सांप गुजर करके आया, सबसे पहला उस व्यक्ति के पांव पर से गया, फिर बाद में साधु के ऊपर चढ़ा, कंधे पर चढ़ करके पीछे चला गया। अब इन दोनों के मन में जो विचार उत्पन्न हो गए वो एक से रहेंगे कि भिन्न भिन्न रहेंगे? साधु तो साधु है, साधु सोचते हैं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये दुख दे नहीं सकता और मैं इससे दुखी हो नहीं सकता। लेकिन पहले वाली व्यक्ति के ऊपर जो सांप गया उसको कैसे लगा हुआ, कैसे लगा होगा? मर गया हमें काट खाएगा क्या ये? उसके मन में उसको मारने की भी भाव आ सकते हैं, आते हैं, छोड़ते नहीं, आते ही हैं। अब ये मारने के जो भाव हो गए, इसके पास चार में से कौन कौन से क्रोध हो सकते हैं बोलो? मारने के भाव आ गए, वहां चारों ही हैं। बिल्कुल चारों प्रकार की हिंसा वहां रहेगी। जिसके पास अनंतानुबंधी कषाय रहती है वह नियम से मारता ही है, ऐसा सिद्धांत नहीं बना सकते, किंतु मारेगा तो वही मारेगा जिसके पास चार हैं। अन्यथा ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है एक के पास चार है और एक के पास चार है, और इन दोनों में जरा फर्क है। ये जरा सज्जन व्यक्ति है, दूसरे का उपकार जानता है, और वह भी सज्जनता तो उनमें आ सकती है लेकिन अभी वो अज्ञानी है, सज्जनता को जीवन में जगाने का प्रयत्न उसने नहीं किया। इन दोनों में जरा सा फर्क है, चारों दोनों में है, इनके पास मारने की शक्ति है लेकिन वह कह रहा है नहीं नहीं मारना नहीं चाहिए, इसको निकाल करके फेंकना चाहिए, दूर करना चाहिए। ऐसे भाव भी आ सकते हैं, दया के भाव भी हो सकते हैं, और दया के भाव अगर नहीं आए तो उसको मारने के भाव भी आ सकते हैं। आंखों के सामने जो जीव दिखते हैं उनको देख करके मारने के अगर भाव हो गए, क्रोध आया तो गुस्से में कुछ भी कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है, घर में चींटियां हो गई, एक दिन देखा, दो दिन देखा, तीसरे दिन देखा, रोज रोज हो रही हैं, कहां की चींटियां ये समझ में नहीं आता, ये कह करके बस झाड़ू ले लिया, फाट 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 फाट, कोई दया नहीं, पाउडर भी डाल दिया। अब उस पाउडर से मरते हैं नहीं मरते हैं ये तो विचार नहीं किया गया, बहुत चिड़ियां होती हैं, इसको पाउडर ही मारो। तो जीवों को देख करके आपको यदि गुस्सा आता है तो ये चारों जीवित हैं, और ये चार भीतर के नागिन हैं, आप बाहर मारते हैं और ये अंदर काटते हैं, ये आपकी हिंसा करते हैं और आप बाहर की हिंसा करते हैं। उनकी हिंसा करने से पहले आप अपनी हिंसा करते हैं, बाद में उनकी हिंसा होती है। गुस्सा पहले करते हैं कि मारते पहले हैं? गुस्सा पूर्वक ही आप मारने के लिए जाते हैं, क्रोध आए बिना हिंसा नहीं हो सकती। पर को दुखी करने का विचार रखने वाला, पर को मारने का विचार करने वाला सबसे पहले अपनी हिंसा कर बैठता है, पहले अपने को दुखी करता है, पहले अपने को पाप में, पाप के बंधन में डालता है, इसके बाद बाहर जाता है। और ये भावना लेकर के कि मेरे द्वारा ये दुखी हो जाए, मेरे द्वारा ये दुखी हो जाए, इसे चालबाजी करके जाता है। कभी कभी पॉलिटिक्स हो तो कहना ही क्या, बड़ी चालबाजी ढंग से जाता है वो सामने। लेकिन ये हिंसा के भाव है क्या? नहीं, ये किसकी हिंसा हो रही है? स्वयं के परमात्मा का घात हो रहा है ना। अब स्वयं को तो आपने पाप में डाल दिया, बाद में क्या किया, उसको दुखी करने के लिए गए। दुखी कर ही करके ही रहूंगा, ये जो संकल्प लेकर के चल पड़े, दुखी हो सकेगा क्या? वो गारंटी है क्या? गारंटी ले नहीं सकते। मैं करके ही रहूंगा, ये गारंटी से वो दुखी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर 7 दिन तक उपसर्ग किया, किया क्या नहीं किया, किसने किया? कमठ ने किया। कमठ भयंकर था, कर्मठ। दुखी करके ही रहूंगा पार्श्वनाथ भगवान को, इस भावना से वह गया और 7 दिन तक लगातार उपसर्ग करता रहा। पार्श्वनाथ का कुछ बिगाड़ सका क्या? नहीं बिगाड़ सका। लेकिन भाव तो यही थे, मैं बदला लेकर के ही रहूंगा, मैं इनको दुखी करके ही रहूंगा। और कितने भावों तक वो चल रहा था उसका वैर? 10 भाव तक। 10 जन्म से वह मैं मारूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इतना गुस्सा करके 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 वह क्रोध जो है, उस कमट के भीतर का क्रोध वैर के रूप में कन्वर्ट हो गया था, वैर के रूप में बदल गया था वो। और जब वह पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर कर रहा था तो वैरी के रूप में ही आ गया था। अब बात ऐसी होती है, तीर्थंकर महापुरुष तपस्या में लीन है, उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, किंतु उन्होंने अपने ध्यान की महिमा से छपक श्रेणी चढ़ करके केवल ज्ञान ही प्राप्त कर लिया। किसी दूसरे जीव के माध्यम से, देव के माध्यम से या मनुष्य के माध्यम से या त्रिरेंज प्राणी के माध्यम से तब तक उपसर्ग हो सकता है, भूकंप आदि ये प्रकृति के माध्यम से तब तक उपसर्ग हो सकता है जब तक कि किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई हो। केवल ज्ञान होने के उपरांत किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं हो सकता। मुनि महाराज ध्यान में बैठे, भूकंप शुरू हो गया, बैठे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं, लेकिन इसका असर आ सकता है। अगर केवल ज्ञान हो गया तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? केवली भगवान ये ऐसे फट गई धरती और केवली भगवान घुस गए तो नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। हाँ, केवली किसी मुनि को केवल ज्ञान हो गया भूकंप के काल में या बाढ़ आने के काल में या और भी कोई प्राकृतिक उपसर्ग हो सकता है, लाट आ गया, कुछ भी हो सकता है, उसी वक्त यदि केवल ज्ञान हो गया तो उनका शरीर आकाश में अधर उठता है, धरती पर धरती का आश्रय करके कभी चलेगा ही नहीं। वो अरहंत बनने के बाद वे आकाश से ही चलेंगे, धरती पर नहीं चल सकते। और जो धरती पर नहीं रहते उनको लिए भूकंप क्या करेगा? तो प्रकृति का उपसर्ग भी संभव नहीं। केवल ज्ञान हो जाए तो। किसी देव का भी उपसर्ग संभव नहीं, किसी मनुष्य का भी उपसर्ग संभव नहीं, किसी त्रिरंश का भी उपसर्ग संभव नहीं। केवली भगवान के लिए एक और विशेषता हो जाती है केवल ज्ञान के बाद, कि वे उनका शरीर तो आकाश में अधर में उठ जाता है, लेकिन उनके चारों ओर एक आभा मंडल, एक प्रभा मंडल ऐसा निकलता है केवली भगवान का स्पर्श भी कोई नहीं कर सकता। उपसर्ग तो दूर, मैं केवली भगवान के चरण स्पर्श करके नमस्कार करना चाहता हूं, नहीं होगा। लक्ष्मण रेखा खींची है, अंदर जाना चाहोगे दूर शाक लगेगा, शाक नहीं लगता, लेकिन आपकी ताकत वहां अंदर जाने के लिए लग नहीं सकती। समूह शरण में रहने वाले तीर्थंकर भगवान का किसी भी श्रावक ने न चरण स्पर्श करके नमस्कार किया, न उनके पांव दबाए, वैयावृत्ति सेवा हुई, और न ही उनका अभिषेक कर पाए। अभिषेक भी नहीं हो सकता, आपका जल कैसे पहुंचेगा। देव लोग जो पुष्प वृष्टि करते हैं, वे पुष्प भी मस्तक पर नहीं गिरते। क्या होता है, उस आभा मंडल तक आकर के यूं बाजू में गिर जाते हैं। उपसर्ग नहीं हो सकता, उपसर्ग ही नहीं, उनका स्पर्श भी नहीं हो सकता, उनका अभिषेक भी नहीं हो सकता, उसके भीतर कोई वस्तु जा नहीं सकती। यानी यूं कहना चाहिए, एक सुरक्षा कवच निर्मित होता है। किसके बाद, केवल ज्ञान के बाद। ये मुनि अवस्था में नहीं, मुनि अवस्था में तो तीर्थंकर भगवान जब आहार के लिए आते हैं, आप चरण स्पर्श करके धोते भी थे, गंधोदक भी मस्तक पर चढ़ाते थे नवदा भक्ति करते समय। करेंगे कि नहीं नवदा भक्ति, चरण पर जल डालते ही वह जल, उस जल में आपने चंदन भी नहीं मिलाया हो तो भी वह चंदन के समान, चंदन से भी बढ़कर मधुर 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 अति मधुर सुगंध वास आने लगता है। जिस जल से आपने चरण धोया, वह जल चंदन से भी बढ़िया महक वाला हो जाता है, इसलिए उसको गंधोदक कहा। उदक यानी जल और गंध यानी सुगंधित, सुगंधित जल को गंधोदक कहते हैं। और वह गंध गंधोदक इसलिए नहीं कि चंदन मिला है इसलिए गंधोदक, नहीं, वो चंदन के समान अपने आप ही सुगंधित बन जाता है, इसलिए उस जल को गंधोदक कहा। लोग क्या कहते हैं, गंधोदक यानी उसमें चंदन डालना चाहिए, ऐसा समझते हैं। नहीं, चंदन डालने की जरूरत नहीं, आप यदि भगवान के ऊपर डाल देते हैं तो वह जल पवित्र हो ही गया, तीर्थ बन गया, वह सुगंधित हो ही गया। नहीं होता, होता है, और हो या ना हो आपको मानना पड़ेगा ये सुगंधित ही है, क्योंकि जिस मूर्ति का हम पंच कल्याणक करते हैं उसमें कितने गुणों का आरोप करते हैं, 1008, बिल्कुल ठीक है। जन्म से भगवान 1008 गुण वाले थे जन्म के साथ, और 1008 ये आत्मिक गुण नहीं, ये शारीरिक लक्षण है। पूरे शरीर में 900 शुभ लक्षण रहते हैं और पगतल में 108 लक्षण रहते हैं शुभ लक्षण, वो 900 और ये 108, इस तरह से 1008 ये शरीर से संबंधित शुभ लक्षण हैं। इन शुभ लक्षणों के कारण उसमें से एक लक्षण ये भी है कि उनका शरीर जन्मतः सुगंधित होता है, सुगंधित होता है, चंदन से भी अधिक सुगंधित, कस्तूरी से भी कहो तो चलेगा, कस्तूरी से भी अधिक सुगंधित शरीर भगवान का होता है। पंच कल्याण करते समय इन 40 इन 1008 गुणों का आरोपण होता है कि नहीं तीर्थंकर की मूर्ति में, इसलिए मूर्ति पूजनी है। हम गुणों के उपासक हैं, दोषों के उपासक नहीं। मनुष्य को गुणों के उपासक होना चाहिए, मानव को गुणों के उपासक होना चाहिए, दोषों के नहीं। और गुण कहाँ पाए जाते हैं तो उनकी संख्या है 5। गुरुओं में रत्नत्रय पाया जाता है और भगवंतों में आत्मिक गुण पाए जाते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये रत्नत्रय तो रहते ही हैं। और वे अरहंत अवस्था से मुक्त हो गए तो और भी वे गुण संपन्न हो जाते हैं। पहले 4 गुणों के धारी थे, अनंत चतुष्टय के धारी थे, अब 8 गुण प्रकट हो जाते, 8ों कर्मों के नाश से 8 गुण प्रकट होते तो सिद्ध भगवान बन जाते। जिनके पास 8 गुण होते हैं वे सिद्ध भगवान, वो परमेष्टि कहलाते, सिद्ध परमेष्टि। और जिनके पास 4 गुण रहते हैं वे अरहंत परमेष्टि, और जिनके पास 4 भी नहीं रहते, 8 भी नहीं रहते, लेकिन 3 रत्नत्रय रहते हैं, वे हैं आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि। ये 5 के पंचायत में हमें रहना चाहिए। ये कंपाउंड है, किसके लिए कंपाउंड है? जो आत्म कल्याण करना चाहता है, जिसकी श्रद्धा 5 से जुड़ गई है, उसकी श्रद्धा किसी से रहती नहीं। श्रद्धा खरीदी नहीं जा सकती, श्रद्धा चुराई नहीं जा सकती, श्रद्धा को बेचा नहीं जा सकता। के बेचा जा सकता, दिया जा सकता है क्या? नहीं। लिया जा सकता है क्या? नहीं। किसी के द्वारा मैं दे रहा हूँ आप ले लो, आपको लेने देने की चीज है क्या वो? नहीं। श्रद्धा तो श्रद्धा होती है, इस श्रद्धा को हमें संभाल के रखना चाहिए। जो श्रद्धा को संभालता है वो सम्यक दृष्टि है, जो श्रद्धा को संभालता है वह एक का विजयी है, 3 रह गए। अब जिसके पास श्रद्धा है उसके पास ये नहीं, कौन सी हिंसा? अनंतानुबंधी हिंसा। ये श्रद्धा क्या, कौन सी श्रद्धा है? अहिंसा की श्रद्धा। अहिंसा क्या है? धर्म है। रत्नत्रय क्या है? धर्म है। धर्म क्या है? अहिंसा है। रत्नत्रय किसका साधक है? अहिंसा को ही साधने वाला साधक है वो। 4 चतुष्टय गुण पाए गए वो किसका परिणाम है? अहिंसा के परिणाम से ही 4 गुण प्रकट हुए हैं। क्या हिंसा के परिणाम से 4 गुण प्रकट हो गए? तो व्यक्ति अहिंसक व्यक्ति पूजनी वंदनी होता है, अहिंसक व्यक्ति। किंतु व्यक्ति पूजनी नहीं, व्यक्ति का गुण पूजनी है, संप्रदाय पूजनी नहीं, जाति पूजनी नहीं, कुल पूजनी नहीं, शरीर पूजनी नहीं, सुंदरता पूजनी नहीं, कीर्ति पूजनी नहीं, ख्याति पूजनी नहीं, यश पूजनी नहीं, यश यश पूजनी नहीं, ये भी पूजनी नहीं, बल पूजनी नहीं, शक्ति पूजनी नहीं, चमत्कार पूजनी नहीं, जादू टोना पूजनी नहीं, मंत्र तंत्र पूजनी नहीं, यंत्र पूजनी नहीं। पूजनी है व्यक्ति के पास जो अहिंसा गुण है, वही रत्नत्र है, वही धर्म है, वही पूजनी है। इस धर्म का अध्ययन हमें करना चाहिए जो सच्चा धर्म है। मानव मात्र के लिए इस धर्म को पालन करने का अधिकार है। कहाँ भटक रहे हैं हम लोग? धर्म 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 कहते कहते दुनिया के दिमाग को बिगाड़ दिया। तुम क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ, तू क्या करता है, ये क्या करता है, तू क्या पूछता है, मैं क्या पूछता हूँ, मैं तू तू इसमें जा रहा है। और ये हिंसा का मार्ग है, ये क्रियाकांड का मार्ग है। मैं तू तू ये क्या है? हिंसा है क्या? नहीं, धर्मात्मा मैं तू तू करता है? नहीं, धर्मात्मा ये देखता है मैं अहिंसक हूं या नहीं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचता। मैं अहिंसक हूं, सुखी हूं, धर्मात्मा हूं, मेरे लिए इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दुनिया की चिंता वो नहीं करता, वो कौन सा धर्म कर रहा है, वो कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, क्या कर रहा है, इसके चक्कर में पड़ने वाला धर्मात्मा होता ही नहीं। वो अज्ञानी है, मनुष्य भव मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, बर्बाद कर रहा है, समझ नहीं रहा। और इस अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए सभी अधिकारी हैं क्या? केवल एक ठप्पा लगाओगे जैन ही इसके अधिकारी हैं? सभी अधिकारी हैं। आप भी मानव हैं और हम भी मानव हैं। तीर्थंकर भी मानव थे और कोई महापुरुष भी मानव ही थे। सभी मानव हैं, सभी जीव हैं। देव भी इसका अधिकारी है, नारकी जीव भी इसका अधिकारी है, त्रियंश भी इसका अधिकारी है। पालो इस धर्म को, अहिंसा धर्म इसको कहते हैं। छोड़ो धर्म धर्म धर्म, जो उल्टी परिभाषाएं दिमाग में भरी हुई थी उसका विसर्जन कर दो। ये है धर्म का लक्षण। इस धर्म के लक्षण को समझकर जो अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के रास्ते पर चलता है वो सज्जन, वो सन्यासी, वो साधु, वो गुरु कहला सकता है। बाकी सब जीरो। मनुष्य पर्याय में आए और कुछ करके गुजरना था, कुछ दूसरा करके ही गुजर गए, बिगड़ गया, गया व्यर्थ। परीक्षा में बैठे, पेपर भी लिखा लेकिन गलत लिखा उत्तर, यही होगा ना? ये नुकसान किसको मिलेगा, खुद को मिलेगा या दूसरे के लिए मिलेगा? अपनी हानि हम ही कर लेते हैं। और इसका रिजल्ट भी हमको ही देखना पड़ता है। इसलिए दूसरा क्या कर रहा है इस तरफ मत देखो। मैं अहिंसक हूं क्या नहीं, मैं धर्म कर रहा हूं क्या नहीं, इतना ही देखो। देखा देखी कुछ मत करो, पहला पासुन भी मत कहो, बहुत हो गया। अज्ञानी थे कहते थे क्षम्य है, अज्ञान अवस्था के पाप को हम धो सकते हैं ज्ञानी बनकर। पहला पासुन जाता ही नहीं दिमाग में, विचारक बने बिना ये बातें मिटेंगी कैसे अपने जीवन में से? और शंट पर शंट जीव जो धर्म करते हैं देखा देखी ही ज्यादा करते हैं। 10 लोग मिलकर के जा रहे हैं तो ही जाएंगे, वो 10 नहीं जा रहे हैं मैं भी नहीं जा रहा हूं। ऐसा धर्म करने का तरीका रहा अपना आज तक, और ये तरीका उचित नहीं। धर्म स्वयं के निर्णय से होता है। धर्म श्रद्धा का नाम है, उस श्रद्धा को कोई मिटा भी नहीं सकता, कोई छीन भी नहीं सकता, कोई उपसर्ग भी नहीं कर सकता, कोई उसको उलट पलट भी नहीं कर सकता, श्रद्धा का नाम ही सम्यक तो है। तीर्थंकर भगवान ने एक बात और कही है, श्रद्धा का दूसरा नाम क्या है? सम्यक दर्शन। किसका श्रद्धान सम्यक दर्शन है? अहिंसा तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। और जो सम्यक दृष्टि होता है उसको जैन कहते हैं। तो इसमें कोई जाति का ठप्पा है क्या? स्वर्ग में भी प्राप्त किया जा रहा है इस सम्यक दर्शन को, इस जैनत्व को। नरक में भी प्राप्त किया जा रहा है। एक तिर्यंच पशु भी प्राप्त कर रहा है, कुत्ता गधा घोड़ा हाथी, ये पंचेंद्रीय प्राणी हैं, इनको भी सम्यक दर्शन होता है तो वो जैन बन गया। जैन का मतलब विजयी हो गया। क्या विजय प्राप्त किया? अनंतानुबंधी पर विजय, चारों गति के जीव कर सकते हैं। तो जैन धर्म चारों गति में है। फिर से बताऊं, जैन धर्म चारों गति में है। इस जैन धर्म पर किसी जाति कुल और संप्रदाय का ठप्पा नहीं लग सकता, ये अकाट्य सत्य है। और ऐसी धर्म की उपासना करने से हमको ही लाभ होने वाला है, किसी दूसरे को होता नहीं। मैं मुनि व्रत पालन कर रहा हूं, मैं अहिंसा धर्म का पालन कर रहा हूं, आपको क्या मिल रहा है बताओ? ये मुझे मिल रहा है कि आपको मिल रहा है? जो करता है उसको मिलता है। आप रोटी खा रहे हैं, आपका पेट भर रहा है, मुझे क्या भर रहा है बताओ? मैं तो भूखा ही हूं। जो करे उसका है। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि इस धर्म की हम रक्षा करेंगे तो वह धर्म हमारी रक्षा करता है। और आप एक अकेले धर्मात्मा बन गए, अहिंसक बन गए, आप अपने कल्याण का मार्ग आपने खोज लिया और पकड़ लिया, करने लग गए, तो ध्यान रखना आपके आसपास का वातावरण भी आपकी चर्या को, आपके इस नेचर को, आपके इस क्रियाकलाप को देखकर ऑटोमेटिक संसारी प्राणी बदलते हैं। पहले खुद को अड़िग रहना पड़ेगा। हाँ, यही प्रभावना है। इसमें अड़िग रहना प्रभावना है कि इसको घबरा करके छोड़ना प्रभावना है? ये धर्मात्मा अड़िग रहता है, अपनी श्रद्धा में डगमगाहट पैदा नहीं कराता, उतना साहस होता है उसके पास। और है साहस, जगाओ तो साहस जग जाता है, नहीं तो नहीं 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 मुरमुर चला जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। हा? पाप करने के लिए तो डर रहे हो, नहीं डर रहे हो। और जो पुण्य का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, शांति का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, स्व को भी हित है उससे और पर को भी हित हो सकता है उससे, उसको पकड़ने के लिए हाय 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 हो क्या होगा ऐसा कह रहे हैं, ये ठीक है क्या? डरना, धर्म करने के लिए डरना ठीक है? चारों ही तो छोड़ना है, इसको छोड़ने के लिए क्या डरना है? मैंने छोड़ दिया, अब कौन क्या लेने देना लेने वाला है, हमसे क्या छीनने वाला है, क्या लेने देने वाला, कौन क्या करने वाला है? कुछ नहीं कर सकता। आपका धर्म आपके साथ रहेगा, उनका धर्म यदि है तो उनके साथ रहेगा, उनका पाप उनके साथ, आपका आपके साथ। लाडू की बात रह गई क्या? अभी खिला देता हूँ, रुको चलो, टाइम हो गया है, इसलिए लाडू कैसे खाएंगे 5 मिनट में, लेट हो जाएगा। फिर भी देखो, लाडू में पैसा नहीं रखना, हाँ इतना ध्यान रखो, नहीं तो भगवान के पेट में पहुंच जाएगा। आप रख करके खा के देख लो कैसा लगता है। भगवान नहीं खाते, वैसे बता दिया। आप लाडू अर्पित करने के लिए ले जाते हैं, अर्पित करते हैं, अर्पित अर्पण करने की वस्तु है, लाडू के अर्पण की जरूरत नहीं। भगवान को उस दिन क्या मिला था? मोक्ष मिला था। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अष्टक में आप क्या चढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं मंत्र में? मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा, फल चढ़ाते थे। अब देखिए अरहंत भगवान के सामने आप नारियल चढ़ाते थे, बादाम चढ़ाते थे, खारिक चढ़ाते थे और कोई फल चढ़ाते थे, प्रासुक फल चढ़ाते थे। बेटी डिस्टर्बिंग, फल चढ़ाते थे तो अरिहंत के सामने फल चढ़ाते समय हम श्रीफल को चढ़ाते थे जिसमें गोला था, ऊपर से कवच भी था, उसको चढ़ाते थे। देखो नारियल मोक्ष फल प्राप्ति के लिए उसको प्रतीक बनाया गया है। नारियल का जो कवच है वो शरीर के समान है, अंदर का जो गोला है वह आत्मा है, और उस गोले के ऊपर जो और काला काला एक परत रहता है वो कर्म है, आठ प्रकार के द्रव्य कर्म है वो, और उसके भीतर जो पानी था वो रागादि भाव है। पहला कौन सा जाता है, पहला कौन सा सूखता है बताओ, पानी सूखता है। रागादि भाव पहले जाते हैं, ध्यान से सुनना, रागादि भाव पहले जाते हैं आत्मा में से, फिर द्रव्य कर्म जाते हैं, फिर नो कर्म जाता है, नो कर्म यानी शरीर। पहला हम रागादि भावों को नष्ट करते हैं, क्रोध मान माया लोभ कषाय भावों को नष्ट करते हैं, फिर बाद में हम द्रव्य कर्म को नष्ट करते हैं। द्रव्य कर्म नष्ट हो गए तो शरीर रहता नहीं, शरीर नष्ट हो जाता है। नष्ट करने की तीन चीजें हैं, रागादि भाव, अज्ञान भाव इत्यादि। ये भावात्मक आत्मा के जो भाव हैं, विकारी भाव हैं, वैभाविक भाव हैं, उनको पहला नष्ट करना पड़ता है, बाद में द्रव्य कर्म को नष्ट करना पड़ता है, बाद में शरीर को नष्ट करना पड़ता है। राग द्रव्य कर्म नष्ट हो गया तो शरीर तो मिलने वाला ही नहीं। आठों प्रकार के कर्म नष्ट हो गए, नाम कर्म नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गए तो शरीर तो वापस आपको मिलता नहीं है। तो देखिए पानी भाव कर्म का प्रतीक है, और वह खोबरे के ऊपर जो काला परत है, लाल काला होता है वो, तो उसको द्रव्य कर्म, पाप और पुण्य कर्म चिपके हुए उसके ऊपर, और गोला जो है वो आत्मा है, और जो उसमें सुगंध तेल, नारियल का तेल, खोबरे का तेल, वो क्या है, वो ज्ञान है, खोबरा आत्मा है और सुगंध तेल वह ज्ञान है, पानी रागादि भाव है। अब इसमें से कौन कौन से अलग कर दिया आपने, पानी सूख गया, उसके लाल पने को छील दिया आपने अंदर का खोबे गोले के ऊपर का, और शरीर को भी गिरा दिया। अब क्या बचा, आत्मा और ज्ञान। देखो इसको फेंकते हो क्या, सबको खाते है, खाने योग्य दोनों है वो, आत्मा और ज्ञान ये दोनों अनादि हैं। अब निर्वाण कल्याण के, निर्वाण कल्याण के दिन ये गोले को हम प्रतीक के रूप में चढ़ाते हैं। भगवान को लाड़ू चढ़ाने का मतलब ये नहीं कि भगवान लाड़ू खाते हैं, खाने का तो उन्होंने पहले ही समाप्त कर दिया। मुनि अवस्था में भूख प्यास थी, वहीं तक खाना पीने का होता था, साधु परमिष्टि तक ये सीमित है। अरहंत भगवान के बनने के बाद खाने पीने की कोई जरूरत नहीं रही। अब खाने पीने की जरूरत नहीं रही, सिद्ध भगवान के बनने के बाद मोक्ष प्राप्त हो गया, मोक्ष प्राप्त होने के बाद भी खाने पीने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो निर्वाण लाड़ू चढ़ा रहे हो ना आप, निर्वाण का मतलब क्या, मोक्ष। तो मोक्ष का प्रतीक आपको श्रीफल चढ़ाना चाहिए, मोक्ष फल प्राप्त ये फलम निरूपामिति स्वः, मोक्ष यानी निर्वाण। निर्वाण के दिन हमें निर्वाण फल ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन किस प्रकार चढ़ाना चाहिए इसको सुन लेना बहुत अच्छा है। उसको छील करके सफेद बना दिया, केवल खोबरा रहा और तेल रहा। वो सफेद दिखता है, लाड़ू के समान दिखता है कि नहीं, लाड़ू उसी को लाड़ू कहो, उसी को लाड़ू कहो, उसको चढ़ाओ। ऐसा बना करके लाओ जिसमें जल नहीं है, जिसका शरीर नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान कुछ भी नहीं रखते। ऐसे हमारे फल को भी मुक्ति का प्रतीक, सिद्ध परमेष्टि का प्रतीक बना करके चढ़ाना चाहिए। ये सच्ची वो है, विधि है, चढ़ाने की विधि है। अब उसमें पैसा डालोगे क्या? पैसा किस काम का? पैसे का कोई काम नहीं। जब आत्मा ने राग द्वेष छोड़ दिया तो पैसे का मोह रहता है क्या? तो लाड़ू के पेट में पैसा हो तो लाड़ू में अभी मोह है फिर तो ये नहीं होता। उस खोबरे में भी पैसा डालने की जरूरत नहीं है। ये बात अलग है कि आप निर्वाण लाड़ू चढ़ाइए, इस सफेद गोले को चढ़ाइए और उसमें कल्पना करिए भगवान महावीर की आत्मा ने ऐसी ही दशा को प्राप्त किया जिसके भीतर पानी नहीं, ऊपर का कालापन नहीं और ऊपर का शरीर भी नहीं है। उसका विचार करो और चढ़ाओ, हे भगवान इस नरियल के समान आपके भीतर केवल आत्मा और केवल ज्ञान, ये दो ही रहा। उसमें जो जल था वो भी सूख गया है, रागादि भाव सूख गए आपके, कर्म था वो भी आपने अलग कर दिया, शरीर था वो भी अलग कर दिया। तीनों से मुक्त ऐसी शुद्ध आत्मा, सफेद आत्मा आपका, निर्मल आत्मा, शुद्ध आत्मा आपकी है। इसलिए निर्वाण फल प्राप्त ये निर्वाण फलम, इसको चाहे लड्डू से उच्चारण करो चाहे फल से उच्चारण करो, बात तो एक ही है। क्योंकि संसार में रहते हुए हम लाड़ू खाते थे, निर्वाण को प्राप्त करने के बाद भी हम लाड़ू खाएंगे, किंतु ये खाने वाले लाड़ू नहीं है। वो अनंत सुख का लाड़ू है। आठों कर्मों से रहित जो सुख है वो दुनिया में किसी भी लाड़ू के पास वो आनंद नहीं है जो उसके पास है। ऐसा लाड़ू चढ़ा करके आप निर्वाण दीपावली मनाएंगे तो इस प्रतीक के रूप में वो एक हमारे लिए उपमा बन जाएगी, उदाहरण बन जाएगा, एक वस्तु बन जाएगी जिसके माध्यम से निर्वाण की परिकल्पना जिस फल के भीतर होगी और उसके माध्यम से हमारे भी कर्म कटेंगे। चढ़ाते समय पैसा डालने से कर्म बंधेंगे। हाँ, भगवान ने सब मोह छोड़ा है और हम भी छोड़ने के लिए आए हैं और पैसे इसमें डाल रहे हैं। पैसे चढ़ाने की वस्तु नहीं, पैसे तो दान की वस्तु है और फल चढ़ाने की वस्तु है। ये विवेक रखना चाहिए। टाइम आपका बहुत हो गया, आज का प्रवचन इतना ही।
प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांध रहे, अब तक हम विषयांध रहे।
एपा आजचा आरधन श्रीमती लीलावती जिनेंद्र शेटे यांचा आहे. सगळ्यांची वडगाव आले असू देत, बाहेर गाव आलेले असू देत, आज जेवढे या हॉलमध्ये उपस्थित आहेत सगळ्यांची वासाची व्यवस्था वरती केलेली आहे. आणि हा एक महत्वाचा असा आता एक कार्यक्रम घ्यायचा आहे. दशलक्षण आणि षोडशकारण आणि दशलक्षण, षोडशकारण व दशलक्षण पूजाविधी पार पडला त्यावेळेला अगदी शुद्ध आहार आपणाला ज्यांच्यामुळे घेता आला ते दीपक सुलतानवा आचार्य आणि त्याची जी टीम, त्यांनी जे कष्ट घेतलं आणि त्यामुळेच आपल्याला या दोन्ही षोडशकारण आणि दशलक्षण पूजाविधी अगदी सोहळ्यामध्ये आपल्याला या ठिकाणी पूर्ण करता आला. तर जे जे लोक या पूजाविधीला बसले होते त्या सर्वांच्या मार्फत या दीपक सुलतानवार यांचा या ठिकाणी आपण सत्कार करायचा आहे. त्यासाठी मी अजित कुमार गांधी, एन के जैन, नितीन शाह यांना समोर बोलवत आहे. त्यांच्या हस्ते दीपक सुलतानवार त्याची जी टीम आहे दोनच मिनिटात कार्यक्रम होतोय. या तिघ पटकन लवकर अजित कुमार गांधी, नितीन शाह, एन के जैन, रमेश जैन, चला कोण असेल तरी या. मी विजयवर्धना विनंती करतो प्रथम या सर्वांचा कॅप्टन दीपक सुलतानवार यांनी समोर यावं. आलंय का दीपक? या इथं सगळ्यांनी टाळ्याच्या गजरामध्ये त्याचं कौतुक कर. राजू सुलतानवार, राजू सुलतानवार, धनंजय ठाणे, मनोज पाटील, निखिल कागे, अनिल गवराई, बाहुबली सुलतानवार, महावीर कागे, आमचे दोन लोक आले नाहीत, सागर रायनवार आणि महावीर गवराई यांचा दोघांचा कोणीतरी एकाने स्वीकारावा. एकजण घ्या, कोणतर घ्या, दीपक घ्या. परत एकदा टाळ्याच्या गजरामध्ये यांचं सर्वांचं अभिनंदन करा. आणि आता वरती सर्वांची वासाची व्यवस्था केलेली आहे, सगळ्यांनी वाचल्या. प्रथम पडगावच्या लोकांना संधी द्या, नंतर वडगावचे लोक आहेत त्यांच्या सुद्धा वासाची व्यवस्था केलेली आहे. उद्या 6:30 वाजता, उद्या 6:30 वाजता आणि दुपारी, सकाळी 6:30 आणि दुपारी 3:30 या क्लासला सर्वांनी अगत्य उपस्थित राहा. नेमावलीचे फॉर्म इथं मारांच्या सहाय्य जवळ ठेवलेले आहेत. ज्यांना ज्यांना नेमावलीचे फॉर्म भाजून सुद्धा पाहिजे असतील त्यांनी ते फॉर्म मारांच्याकडून घेऊन फॉर्म भरून द्यावे.